एकत्र ज्ञान गोष्ठी। आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें रात के आसमान के, आप कह सकते हैं, रहस्यों के थोड़ा और पास ले जाएगी।
नमस्ते।
सोचिए वो दूर टिमटिमाते तारे, ग्रह, उन्हें अपनी आंखों से देखना, ये एक ऐसी इच्छा है मुझे लगता है हम सब में कहीं ना कहीं होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसी इच्छा को हकीकत बनाने का एक जरिया है टेलीस्कोप यानी दूरबीन।
हाँ,
और आज हम जेफ कॉटरेल की किताब जिसका टाइटल है टेलीस्कोप्स, उसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो शौकिया तौर पर, मतलब हॉबी की तरह, खगोल विज्ञान में कदम रखना चाहते हैं।
बिल्कुल सही। और ये सिर्फ कोई उपकरण खरीदने की गाइड नहीं है, है ना? ये उस उत्सुकता को एक सही दिशा देती है।
हाँ,
आजकल देखिए जानकारी तो बहुत है ऑनलाइन हर जगह, पर सही रास्ता मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो ये किताब एक भरोसेमंद साथी जैसी लगती है।
सही कहा। तो चलिए समझते हैं कि कॉटरेल हमें इस ब्रह्मांडीय सफर पर कैसे ले जाते हैं।
अच्छा, तो जेफ कॉटरेल के बारे में क्या खास है?
जेफ कॉटरेल की बात करें तो उनमें एक बड़ा अच्छा संतुलन है। एक तरफ तो वो एक जुनूनी शौकिया खगोलविद हैं, मतलब जिन्होंने खुद रातें बिताई हैं तारों को देखते हुए।
अच्छा।
और दूसरी तरफ उनमें गहरी तकनीकी समझ भी है। कुछ जगह पढ़ने को मिलता है कि उन्हें टेलीस्कोप बनाने का और लोगों को खगोल विज्ञान सिखाने, मतलब पब्लिक आउटरीच का भी अनुभव है।
हाँ, और यही बात शायद उन्हें खास बनाती है, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं बताते बल्कि असल अनुभव से बोलते हैं।
बिल्कुल। टेलीस्कोप इस्तेमाल करने में जो दिक्कतें आती हैं, जो उलझने होती हैं शुरू में।
हाँ, जैसे कौन सा लें, इतने सारे नाम, ये कैसे काम करता है।
वही वही, वो इन सबको बहुत अच्छे से समझते हैं। और उनकी खूबी यही है कि वो मुश्किल चीजों को जैसे ऑप्टिक्स वगैरह आसान भाषा में समझा देते हैं।
एक गाइड की तरह।
हाँ बिल्कुल। और किताब का मूल विचार भी यही है कि भाई खगोल विज्ञान सिर्फ बड़े वैज्ञानिकों के लिए नहीं है।
सही।
अगर सही जानकारी हो, सही उपकरण हो, तो कोई भी रात के आसमान का नजारा ले सकता है, उसकी खोज कर सकता है। ये किताब टेलीस्कोप को लेकर जो एक डर या झिझक होती है ना,
हाँ, कि बहुत महंगा होगा, बहुत मुश्किल होगा।
बिल्कुल, उस डर को हटाकर उसे एक समझने लायक, इस्तेमाल करने लायक साथी की तरह पेश करती है।
ये उन बुनियादी सवालों से शुरू होती है जो सबके मन में आते हैं ना। टेलीस्कोप आखिर है क्या चीज,
हाँ
काम कैसे करता है, और इतने सारे विकल्प हैं बाजार में, अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही वाला कैसे चुने, और खरीदने के बाद भी उसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि वाकई कुछ दिख सके। अक्सर लोग यहीं आके अटक जाते हैं मुझे लगता है।
सही रही बात है। किताब ना एक तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ती है। पहले वो रोशनी और ऑप्टिक्स के बिल्कुल बेसिक नियम समझाती है, लेंस और शीशे कैसे रोशनी मोड़ते हैं या इकट्ठा करते हैं।
अच्छा।
फिर आते हैं कुछ जरूरी शब्द जैसे एपर्चर, फोकल लेंथ, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, जिनका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है विज्ञापनों से हटकर।
हाँ, वो बड़े बड़े नंबर जो लिखे होते हैं।
बिल्कुल। उसके बाद किताब अलग अलग तरह के टेलीस्कोप्स की बात करती है, रिफ्रैक्टर, रिफ्लेक्टर और वो हाइब्रिड वाले कैटाडियोप्टिक।
अच्छा, हाँ, उनके नाम सुने हैं।
हाँ, तो कौन सा कैसा है, किसके क्या फायदे नुकसान हैं, और बात सिर्फ टेलीस्कोप की नली, मतलब ट्यूब तक ही नहीं रहती।
नहीं, और क्या जरूरी है?
जिस स्टैंड पर टेलीस्कोप टिका होता है, माउंट,
हाँ,
जिस लेंस से हम देखते हैं, आईपीस, और दूसरी जरूरी चीजें जैसे फाइंडरस्कोप, इन सब की अहमियत भी बताई गई है।
अच्छा, मतलब पूरा सिस्टम समझना जरूरी है।
बिल्कुल। और अंत में सबसे मजेदार हिस्सा देखें क्या, चांद के गड्ढों से लेकर दूर की आकाश गंगाओं तक क्या क्या देख सकते हैं। तो ये सिर्फ खरीदने की गाइड नहीं, बल्कि एक तरह से आपको शौकिया खगोल विज्ञान की दुनिया में दाखिल कराने का पूरा पैकेज है।
तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब की शुरुआत होती है उस एहसास से, वो जो रात के आसमान को देखकर एक हैरानी होती है, जिज्ञासा होती है।
हाँ, वो विस्मय।
हाँ, किताब कहती है कि टेलीस्कोप इसी जिज्ञासा को एक सक्रिय खोज में बदलने की चाबी है। यहाँ इतिहास का जिक्र भी आता है, गैलीलियो का।
गैलीलियो गैलीली। हाँ
हाँ, उन्होंने 17वीं सदी में एक साधारण सी दूरबीन, स्पाईग्लास, को आसमान की तरफ मोड़ा और बस हमारी दुनिया की समझ बदल गई।
सोचिए, बृहस्पति के चांद खोज निकाले, शुक्र ग्रह के फेजेस देखे।
हाँ, ये सब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से हुआ जो लेंस का इस्तेमाल करता है।
बिल्कुल। और फिर आए सर आइज़ैक न्यूटन, उन्होंने लेंस की एक कमी पकड़ी जिसे कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन।
ये क्या होता है?
मतलब लेंस सारे रंगों की रोशनी को एक ही बिंदु पर फोकस नहीं कर पाता, तो तस्वीर थोड़ी धुंधली या किनारों पर रंगीन दिख सकती है, खासकर चमकीली चीजों के आसपास।
अच्छा, समझी।
तो न्यूटन ने सोचा, लेंस की जगह शीशे मतलब दर्पण का इस्तेमाल क्यों ना करें, और उन्होंने बना दिया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
कमाल है।
और ये दो डिजाइन, लेंस वाले रिफ्रैक्टर और दर्पण वाले रिफ्लेक्टर, आज भी टेलीस्कोप की दुनिया के, आप कह सकते हैं, मुख्य आधार हैं।
अब यहीं पर कुछ बुनियादी बातें समझना जरूरी है जो कॉटरेल बहुत जोर देकर समझाते हैं।
हाँ, बताइए।
सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी चीज, एपर्चर।
एपर्चर ये क्या है?
ये टेलीस्कोप के मुख्य लेंस या दर्पण का व्यास है, मतलब उसकी चौड़ाई। इसे ऐसे समझे जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बाल्टी।
अच्छा।
जितनी चौड़ी बाल्टी होगी उतना ज्यादा पानी जमा होगा, वैसे ही जितना बड़ा एपर्चर उतनी ज्यादा रोशनी टेलीस्कोप इकट्ठा करेगा।
और ज्यादा रोशनी का मतलब? मतलब धुंधली चीजें ज्यादा साफ दिखेंगी और चमकीली चीजों के बारीक डिटेल्स, बारीकियां नजर आएंगी।
वाह,
बिल्कुल। कॉटरेल इसे ब्रह्मांड की मुद्रा कहते हैं प्रकाश। जितना ज्यादा आप जमा कर सकते हैं, आपके नज़ारे उतने ही अमीर होंगे। इसलिए अक्सर कहा जाता है, और किताब भी यही कहती है, एपर्चर इज किंग।
अच्छा, एपर्चर ही राजा है, मतलब टेलीस्कोप चुनते वक्त सबसे पहले एपर्चर पर ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे अहम है।
ठीक है, और दूसरा जरूरी शब्द?
दूसरा है फोकल लेंथ। ये लेंस या दर्पण से उस बिंदु तक की दूरी है जहाँ रोशनी फोकस होती है।
इसका क्या असर होता है?
ये तय करती है कि टेलीस्कोप कितना जूम करेगा, मतलब आवर्धन कितना होगा, और एक बार में आसमान का कितना हिस्सा दिखेगा, जिसे कहते हैं दृश्य क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू।
अच्छा, और यही आवर्धन या मैग्निफिकेशन की बात आती है।
हाँ बिल्कुल, आवर्धन मैग्निफिकेशन, जिसके पीछे अक्सर नए लोग भागते हैं। विज्ञापनों में देखते हैं ना, 600x पावर।
हाँ हाँ, बड़े बड़े दावे होते हैं।
लेकिन किताब हमें सावधान करती है, आवर्धन निकाला जाता है टेलीस्कोप की फोकल लेंथ को आईपीस की फोकल लेंथ से भाग देकर। आप चाहें तो किसी भी टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा आवर्धन पा सकते हैं, पर अगर एपर्चर छोटा है तो नतीजा होगा एक बड़ी धुंधली बेकार सी तस्वीर, कोई डिटेल नहीं दिखेगा। इसे खाली आवर्धन कहते हैं।
अच्छा, मतलब सिर्फ बड़ा दिखना काफी नहीं है, साफ दिखना जरूरी है।
बिल्कुल, असली शक्ति चीजों को सिर्फ बड़ा करने में नहीं, उन्हें साफ और चमकीला दिखाने में है, और यह क्षमता सीधे एपर्चर से जुड़ी है। एपर्चर ही रिजोल्यूशन यानी बारीकी दिखाने की ताकत भी तय करता है।
समझ गए, तो ये तो हुई बुनियादी बातें।
हाँ।
अब आते हैं हम टेलीस्कोप के मुख्य प्रकारों पर। पहला था रिफ्रैक्टर।
हाँ, रिफ्रैक्टर्स, ये गैलीलियो वाला डिजाइन जिसमें सामने एक लेंस होता है। फायदे, एकदम तीखी हाई कॉन्ट्रास्ट छवियां, खासकर चांद और ग्रहों के लिए बेहतरीन।
अच्छा।
ट्यूब बंद होती है तो अंदर धूल कम जाती है, हवा का असर कम होता है, और मेंटेनेंस भी कम चाहिए।
सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, कोई नुकसान भी है?
नुकसान, जैसा हमने कहा, क्रोमैटिक एबरेशन की संभावना रहती है, खासकर सस्ते मॉडलों में। और सबसे बड़ी बात ये, प्रति इंच एपर्चर के हिसाब से सबसे महंगे होते हैं।
ओ, मतलब अगर बड़ा एपर्चर चाहिए तो रिफ्रैक्टर बहुत महंगा पड़ेगा।
हाँ, काफी महंगा।
ठीक है, तो दूसरा प्रकार था रिफ्लेक्टर।
जी, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर्स, न्यूटन वाला डिजाइन। इसमें ट्यूब के पीछे एक बड़ा कटोरे जैसा अवतल दर्पण रोशनी इकट्ठा करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा,
क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होता।
बिल्कुल, कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं, और उससे भी बड़ा फायदा ये, प्रति रुपए सबसे ज्यादा एपर्चर देते हैं।
अच्छा, मतलब कम बजट में ज्यादा रोशनी पाने का सबसे अच्छा तरीका।
हाँ, यही वजह है कि ये धुंधली चीजों जैसे दूर की आकाशगंगाओं, निहारिकाओं को देखने के लिए बहुत लोकप्रिय है। इसी रिफ्लेक्टर का एक बहुत ही सरल और सस्ता रूप है डॉब्सोनियन टेलीस्कोप।
जी,
जॉन डॉब्सन ने इसे लोकप्रिय बनाया। इसने बड़े अपर्चर वाले टेलीस्कोप को आम लोगों के बजट में ला दिया।
ये तो बहुत अच्छा है, पर इसके भी कुछ चैलेंज होंगे।
हाँ हैं। ट्यूब अक्सर खुली होती है तो दर्पण पर धूल जम सकती है, और दर्पणों को समय समय पर एकदम सीध मिलाना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कॉलिमेशन कहते हैं।
कॉलिमेशन, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
हाँ, थोड़ा तकनीकी लगता है शुरू में, पर किताब कहती है कि ये एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, जैसे गिटार को ट्यून करना।
अच्छा,
थोड़ा अभ्यास चाहिए, पर ये जरूरी है ताकि रिफ्लेक्टर अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। कॉटरेल इसे डरावना बनाने के बजाय एक सीखने लायक प्रक्रिया की तरह समझाते हैं।
ठीक है, और तीसरा प्रकार कैटा, क्या था?
कैटा डियोप्ट्रिक। ये हाइब्रिड है, मतलब लेंस और दर्पण दोनों का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, मिक्स।
हाँ, इनका डिजाइन ऐसा होता है कि रोशनी ट्यूब के अंदर कई बार मुड़ती है, जिससे एक लंबी फोकल लेंथ वाली दूरबीन एक छोटी कॉम्पैक्ट ट्यूब में समा जाती है। इसके दो जाने माने उदाहरण हैं श्मिट कैसग्रेन और मक्सुतोफ कैसग्रेन।
इनका क्या फायदा है?
ये बहुत पोर्टेबल होते हैं, कहीं ले जाना आसान, साइज में छोटे होते हैं और काफी वर्सेटाइल भी हैं। ग्रहों और गहरी आकाश की वस्तुओं दोनों के लिए ठीक ठाक काम करते हैं।
और नुकसान?
नुकसान ये कि ये उसी साइज के रिफ्लेक्टर से ज्यादा महंगे होते हैं और इन्हें बाहरी तापमान के बराबर ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, जो अच्छी तस्वीर के लिए जरूरी है।
ये भी ध्यान रखना होगा।
अब एक बहुत जरूरी बात जिस पर कॉटरेल बहुत जोर देते हैं, माउंट।
हाँ, वो स्टैंड जिस पर टेलीस्कोप टिका होता है।
बिल्कुल, किताब साफ कहती है एक शानदार ऑप्टिक्स वाला टेलीस्कोप भी अगर हिलते डुलते कमजोर माउंट पर रखा है तो वो बेकार है।
अरे,
माउंट स्थिरता देता है, वाइब्रेशन कम करता है और आसमान में चीजों को ट्रैक करने में मदद करता है। ये खगोल विज्ञान का गुमनाम हीरो है, ऐसा कहते हैं कॉटरेल।
अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं था इतना जरूरी होगा। कितने तरह के होते हैं ये?
मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकार हैं। पहला ऑल्टाजेमुथ, ये सबसे सरल है, ऊपर नीचे ऑल्टीट्यूड और दाएं बाएं एजेमुथ घूमता है, जैसे कैमरे का ट्राइपॉड।
हाँ, ये तो आसान लगता है।
डॉब्सोनियन टेलीस्कोप इसी तरह के सरल लकड़ी के बने माउंट का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल में बहुत आसान और सहज।
और दूसरा?
दूसरा है इक्वेटोरियल माउंट। ये थोड़ा ज्यादा जटिल दिखता है पर इसका मकसद खास है।
क्या मकसद?
इसे पृथ्वी के घूमने की धुरी के समानांतर सेट किया जाता है। एक बार इसे सही से सेट कर दिया जाए, जैसे ध्रुव तारे की तरफ अलाइन करके, तो फिर आप सिर्फ एक नॉब घुमाकर या मोटर से किसी भी तारे या ग्रह को आसमान में आसानी से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के घूमने को काउंटर करता है। या एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हो, मतलब तस्वीरें ले रहे हो, तब ये बहुत जरूरी हो जाता है।
आजकल तो वो कंप्यूटराइज्ड गो टू माउंट भी आते हैं।
हाँ बिल्कुल, उनमें हजारों चीजों का डेटाबेस होता है, आप बस रिमोट पर नाम चुने और माउंट खुद ब खुद टेलीस्कोप को उस चीज पर टिका देता है। जाहिर है ये थोड़े महंगे होते हैं।
तकनीक कहाँ पहुंच गई है।
बिल्कुल, टेलीस्कोप और माउंट के अलावा आईपीसेस भी बहुत जरूरी हैं।
हाँ, वो छोटे लेंस जिनसे हम आखिर में देखते हैं।
हाँ, अलग अलग आईपीस अलग अलग आवर्धन देते हैं। किताब सलाह देती है कि ढेरों सस्ते आईपीस खरीदने से बेहतर है दो तीन अच्छी क्वालिटी के आईपीस लें। एक कम पावर वाला जिससे आसमान का चौड़ा नजारा दिखे, एक मीडियम पावर वाला और एक हाई पावर वाला ज्यादा जूम के लिए।
ठीक है, क्वालिटी पे ध्यान देना है।
बिल्कुल, और हाँ, फाइंडरस्कोप, वो छोटी दूरबीन जो मुख्य टेलीस्कोप के ऊपर लगी होती है।
हाँ हाँ, देखी है। वो किसके लिए?
क्योंकि मुख्य टेलीस्कोप का दृश्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, मतलब वो आसमान का बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाता है, तो फाइंडरस्कोप जिसका नजारा चौड़ा होता है आपको सही दिशा में लक्ष्य साधने में मदद करता है।
अच्छा, पहले फाइंडरस्कोप से ढूंढो, फिर मेन टेलीस्कोप से देखो।
सही, और फिल्टर्स भी काम आ सकते हैं, जैसे चांद की तेज चमक कम करने के लिए मून फिल्टर, या शहरों की रोशनी के प्रदूषण को कुछ हद तक कम करके निहारिकाओं को बेहतर देखने के लिए नेब्यूला फिल्टर।
वाह, इतनी सारी चीजें हैं ध्यान रखने के लिए।
हाँ, पर ये सब मिलकर ही एक अच्छा अनुभव देते हैं। तो अब जब हमें उपकरणों की थोड़ी समझ हो गई है तो असली मजा है देखने में।
हाँ बिल्कुल, किताब क्या सलाह देती है देखने के लिए?
पहली बार देखने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। मौसम साफ हो, गर्म कपड़े पहने, रातें ठंडी हो सकती हैं। टेलीस्कोप को बाहर रखकर थोड़ा ठंडा होने दें ताकि ट्यूब के अंदर की हवा बाहरी तापमान के बराबर हो जाए।
अच्छा, ये जरूरी है?
हाँ, इससे तस्वीर ज्यादा स्थिर और साफ दिखती है। और शुरुआत आसान चीजों से करें। चांद तो है ही लाजवाब, उसके गड्ढे, पहाड़, घाटियां देखिए।
हाँ, चांद देखना तो मुझे भी पसंद है।
ग्रह देखें, बृहस्पति शायद आपको उसके बादलों की पट्टियां और चार बड़े चांद भी दिख जाएं, छोटे बिंदुओं की तरह।
सच में?
हाँ, और शनि के छल्ले, वो पहली बार देखना वाकई जादुई होता है। एक ऐसा पल जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा किताब में लिखा है।
मैं कल्पना कर सकती हूँ। और गहरी आकाशीय चीजें जैसे नेब्यूला, गैलेक्सी।
हाँ, उनके लिए चमकीले लक्ष्य चुने शुरू में, जैसे सर्दियों में ओरियन नेब्यूला या पतझड़ में एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये काफी चमकीली हैं और छोटे टेलीस्कोप से भी दिख जाती हैं, धुंधले धब्बों की तरह।
और वो कोई खास तकनीक बता रहे थे आप, एवर्टेड विजन?
हाँ, एवर्टेड विजन, किसी धुंधली चीज को सीधे घुड़ने के बजाय थोड़ा सा हटकर देखें, आंख के कोने से। हमारी आंख के किनारे वाले हिस्से कम रोशनी में ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो कई बार वो धुंधली चीज आपको ज्यादा साफ दिख सकती है।
अरे वाह, ये तो कमाल की टिप है।
और हाँ, धैर्य, आंख को अंधेरे में पूरी तरह ढलने में 15-20 मिनट लग सकते हैं, जल्दबाजी ना करें।
ठीक है, तो टेलीस्कोप चुनते वक्त क्या बातें ध्यान में रखनी है संक्षिप्त में?
किताब हमें फेर याद दिलाती है, एपर्चर पहली प्राथमिकता।
हाँ, एपर्चर इज किंग।
बिल्कुल। फिर सोचें अपनी जीवन शैली के बारे में, क्या आप आसानी से बाहर जा सकते हैं या बालकनी से ही देखेंगे, आपकी रुचि ग्रहों में है या आकाश गंगाओं में, और बजट सिर्फ ट्यूब का नहीं, पूरे सिस्टम का, ट्यूब, माउंट, एपीस। और उन सस्ते डिपार्टमेंट स्टोर वाले टेलीस्कोप से बचें जो 600x पावर का दावा करते हैं, वो अक्सर निराशा ही देते हैं।
सही कहा, आजकल डिजिटल कैमरों और कंप्यूटर नियंत्रण ने भी शौकिया खगोल विज्ञान को बहुत बदल दिया है, पर शायद बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं, है ना?
हाँ, बुनियादी सिद्धांत वही हैं। तकनीक ने बस चीजों को थोड़ा आसान और कुछ मामलों में ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ टेकअवेज क्या होंगे?
पहला तो वही जो आप शायद याद हो गया होगा, एपर्चर सबसे महत्वपूर्ण है, रोशनी इकट्ठा करने की क्षमता ही असली ताकत है।
हाँ, दूसरा?
दूसरी बात, टेलीस्कोप एक सिस्टम है, सिर्फ ट्यूब नहीं बल्कि ट्यूब, माउंट, एपीस सब मिलकर काम करते हैं। एक अच्छा स्थिर माउंट उतना ही जरूरी है जितनी अच्छी ऑप्टिक्स, इस पर समझौता नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल। तीसरा?
तीसरा, खरीदने से पहले जानकारी जरूरी है। ये किताब आपको ज्ञान से लैस करती है ताकि आप समझदारी भरा फैसला ले सके और मार्केटिंग के झांसों में ना आए, वो खाली आवर्धन वाली बात याद रखनी चाहिए।
हाँ हाँ।
चौथा, ये खोजगार लोकतंत्रीकरण है। टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड को सिर्फ प्रयोगशालाओं से निकालकर आम लोगों के पिछवाड़े तक पहुंचा दिया है। कोई भी सीख सकता है, देख सकता है। भारत में भी बहुत से शौकिया खगोल विज्ञान क्लब है।
सही।
और पांचवा?
पांचवा, अवलोकन एक कला है जिसे सीखा जाता है। टेलीस्कोप खरीद लेना ही काफी नहीं, देखना सीखना पड़ता है, धैर्य रखना, तकनीकों का इस्तेमाल करना, अपनी आंख को प्रशिक्षित करना, खासकर हमारे शहरों में जहां इतना प्रकाश प्रदूषण है।
हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल, वहां ये कौशल और भी जरूरी हो जाता है।
सही फिल्टर और तकनीक से फिर भी बहुत कुछ देखा जा सकता है।
और छठा?
और छठा, ये हमें इतिहास से जोड़ता है। जब आप गैलीलियो या न्यूटन के बारे में सोचते हैं और फिर खुद उसी तरह आसमान में झांकते हैं तो एक अद्भुत जुड़ाव महसूस होता है। ये मानवीय जिज्ञासा की एक लंबी कहानी का हिस्सा बनने जैसा है।
ये बहुत अच्छी बात कही आपने। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो इन बातों को यादगार बनाती हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे एपर्चर के बारे में वो बात, किसी भी टेलीस्कोप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका एपर्चर है। प्रकाश ब्रह्मांड की मुद्रा है। आप जितना अधिक जमा कर सकते हैं, आपके विचार उतने ही समृद्ध होंगे।
वाह, सीधी और गहरी बात।
और माउंट के बारे में वो चेतावनी, एक डगमगाते कमजोर माउंट पर विश्व स्तरीय टेलीस्कोप एक बेकार टेलीस्कोप है। माउंट खगोल विज्ञान का गुमनाम नायक है। यह उस सिस्टम वाली बात को पुष्ट करता है।
बिल्कुल।
और आवर्धन के बारे में,
आवर्धन के पीछे भागने वालों के लिए ये सलाह,
आवर्धन का पीछा करना शुरुआती लोगों की मूर्खता है। असली शक्ति चीजों को बड़ा बनाने में नहीं बल्कि उन्हें स्पष्ट और उज्ज्वल बनाने में है।
ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए।
हाँ, और वो प्रेरणादायक पहलू जो इस शौक की आत्मा है, टेलीस्कोप के माध्यम से शनि के छल्लों का आपका पहला दृश्य एक ऐसा क्षण है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड एक किताब की अमूर्त अवधारणा से एक वास्तविक स्थान बन जाता है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं।
रोंगटे खड़े हो गए सुनके।
या ये सोच के, आपके टेलीस्कोप में प्रवेश करने वाला हर फोटोन आपकी आंख से मिलने के लिए अरबों साल की यात्रा कर चुका है। ये आपको ब्रह्मांड के इतिहास का हिस्सा बना देता है।
अद्भुत। इस किताब की सीखें तो सिर्फ टेलीस्कोप खरीदने तक ही सीमित नहीं है, है ना? इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है?
बिल्कुल। सबसे सीधा फायदा तो ये है कि हम बेहतर उपभोक्ता बनते हैं। किसी भी तकनीकी चीज को खरीदते वक्त हम मार्केटिंग के दावों से परे जाकर असलियत को समझ पाते हैं।
हाँ, ये तो हर जगह काम आता है।
टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना धैर्य और ध्यान सिखाता है। चीजों को सेट करना, इंतजार करना, ध्यान से देखना, यह आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में एक ठहराव लाता है।
एक तरह का माइंडफुलनेस अभ्यास जैसा?
हाँ, कह सकते हैं। ये समस्या समाधान का कौशल भी विकसित करता है, जैसे रिफ्लेक्टर को कॉलिमेट करना सीखना। आप सीखते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं और उन्हें ठीक कैसे किया जाए। और हाँ, ये हमें पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। आप मौसम पर, आसमान की दशा पर ध्यान देने लगते हैं और प्रकाश प्रदूषण का असर साफ दिखता है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंधेरे आसमान को बचाने की जरूरत है, भारत में ये बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, ये एक आजीवन शौक बन सकता है और आपको समान रुचि वाले लोगों से जोड़ सकता है, क्लबों के जरिए, ऑनलाइन समुदायों के जरिए।
और शायद सबसे गहरा असर होता है नजरिए में बदलाव का।
हाँ, मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ा असर है। जब आप ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं, अरबों तारे, अरबों आकाशगंगा हैं, तो अपनी रोजमर्रा की परेशानियां थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। एक विनम्रता और आश्चर्य का भाव आता है, पर्सपेक्टिव मिलता है।
बिल्कुल, तो आपके लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख या सबसे दिलचस्प बात क्या रही?
मेरे लिए ये टेलीस्कोप लीक पुल की तरह है। ये हमें अतीत के खोजियों से जोड़ता है, विज्ञान के सिद्धांतों से जोड़ता है और सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी तकनीक और नए आविष्कार मिलकर हम सबके लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खोल रहे हैं। ये सिर्फ एक उपकरण नहीं, हमारी जानने की इच्छा, हमारी जिज्ञासा का प्रतीक है।
बहुत खूब कहा। और मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि ज्ञान आपको कैसे सशक्त बनाता है। ये समझना कि ये जटिल दिखने वाले उपकरण कैसे काम करते हैं, डर को हटाकर आत्मविश्वास और जिज्ञासा पैदा करता है। कॉन्ट्रेल मुश्किल चीजों को इतना सुलभ बना देते हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये वाकई किसी को भी प्रेरित कर सकता है कि वो बाहर निकले और आसमान को देखना शुरू करे।
हाँ, और कौन जाने, अगली कोई बड़ी खोज शायद किसी शौकिया खगोलविद द्वारा ही की जाए, शायद इसी किताब से प्रेरणा लेकर।
क्या पता, संभावनाएं अनंत हैं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्सेसेंशिया फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।